आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अनु। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये क्लास 10th के साइंस का 5th चैप्टर है। आज की क्लास को शुरू करने से पहले हम रिवाइज कर लेंगे कि इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि एट प्रेजेंट आज की डेट में हमारे पास करीब 118 एलिमेंट्स नोन है, इनकी जानकारी हमें है, और उनमें से भी 94 एलिमेंट्स जो है वो नेचुरली अकरिंग है, प्राकृतिक रूप से हमें मिले हैं। साइंटिस्ट ने सोचा कि इतने सारे एलिमेंट्स नोन हैं और इन सभी की स्टडी करना, इनके ऊपर रिसर्च करना बहुत मुश्किल होगा, इकट्ठे इन सभी के ऊपर स्टडी करना इतना आसान नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि हमें एलिमेंट्स की ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, उनको अलग अलग ग्रुप में डालना पड़ेगा, सिस्टमैटिक बनाना पड़ेगा, ताकि हमें इनका स्टडी करना, रिसर्च करना इनके ऊपर आसान हो पाए। और इसी सोच के आधार पर शुरू हुई पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, यानी कि एलिमेंट्स को ग्रुप्स में डालने की कोशिश शुरू हुई। सबसे पहली कोशिश जो साइंटिस्ट ने की थी उसमें उन्होंने एलिमेंट्स को मेटल और नॉन मेटल के आधार पर बांटा था। और उसके बाद सबसे अच्छी कोशिश जिसमें साइंटिफिक बेसिस इस्तेमाल हुआ था, एटॉमिक मास का इस्तेमाल किया गया था, उसमें साइंटिस्ट जो थे वो थे डोबरेनर। डोबरेनर एक जर्मन साइंटिस्ट थे और इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि मैं ग्रुप बनाऊंगा एलिमेंट्स का, जो सिमिलर तरीके के ग्रुप्स होंगे, जो सिमिलर तरीके के एलिमेंट्स होंगे उनको मैं एक ग्रुप में डालूंगा, और उनको मैं कैसे अरेंज करूंगा, उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेसिस पर उनको मैं अरेंज करूंगा, यानी कि जो एटॉमिक मास का बढ़ता क्रम है उसके आधार पर मैं इसे अरेंज करूंगा, और उसमें से भी क्या करूंगा कि ग्रुप्स बनाऊंगा जिसमें सिमिलर जो एलिमेंट्स होंगे उनको सेम ग्रुप में रखूंगा। अब इन्होंने जो ग्रुप्स बनाए उसमें जो ग्रुप्स थे उसमें तीन तीन एलिमेंट्स थे, एक ग्रुप के अंदर तीन एलिमेंट्स थे, और इनका कहना था कि ये जो तीन एलिमेंट्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे के जैसी होती हैं, और इसीलिए इन्होंने तीन एलिमेंट्स को एक एक ग्रुप में डाला। साथ में ये काम इन्होंने ईयर 1817 में किया था, और इन्होंने ये कहा था कि जो तीन एलिमेंट्स इन्होंने एक ग्रुप में डाले हैं उसमें से जो सबसे पहला एलिमेंट है और जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट है, अगर उनके एटॉमिक मास को ऐड किया जाए और डिवाइड बाय 2 किया जाए तो जो मिडल एलिमेंट है उसके एटॉमिक मास के रफली आप लोगों को वैल्यू मिल जाएगी। डोबरेनर की जो बात थी ये सभी के सभी एलिमेंट्स पर अप्लाई नहीं हो रही थी, उनके समय पर जितने एलिमेंट्स नोन थे उन सभी पर इनकी ये बात अप्लाई नहीं हो रही थी, कुछ ही एलिमेंट्स पर इनकी बात अप्लाई हो रही थी, और वो एलिमेंट्स जो थे उनको इन्होंने तीन ग्रुप्स पर ही अप्लाई हो रही थी, और तीन ग्रुप्स के अंदर हर एक ग्रुप के अंदर तीन तीन एलिमेंट्स थे। आप लोग देख सकते हैं पेज नंबर 80 पर टेबल 5.2, इसमें डोबरेनर ट्राइड्स दिखाए गए हैं। इसमें आप लोग देखो पहला ग्रुप जिसकी बात हम कर रहे थे कि अगर पहले एलिमेंट और लास्ट वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास का सम करके डिवाइड बाय 2 करें तो सेंट्रल जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप अगर लिथियम का एटॉमिक मास देखें तो लिथियम का एटॉमिक मास है 6.9, और पोटेशियम जो लास्ट एलिमेंट है वो है पोटेशियम, और पोटेशियम का एटॉमिक मास है 39। अगर इन दो एटॉमिक मासेस को आप ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपको वैल्यू मिलती है 22.95, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 23। और जो 23 वैल्यू है ये सोडियम का एटॉमिक मास है। तो जो डोबरेनर की बात थी वो केवल तीन ग्रुप पर ही अप्लाई हो पा रही थी, यानी कि टोटल 9 एलिमेंट्स पर अप्लाई हो पा रही थी, और क्योंकि इतने कम एलिमेंट्स पर इनकी बात अप्लाई हो पा रही थी इसीलिए इनके जो ये रूल था इसको डिस्कार्ड कर दिया गया। सभी के सभी वैज्ञानिकों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। इनके बाद आए न्यूलैंड्स, जॉन न्यूलैंड्स, इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी कहा कि हम भी अरेंज करेंगे, ये भी प्रेरित हुए डोबरेनर की बात से, और इन्होंने भी अरेंज करने की कोशिश की। उनके वक्त जितने एलिमेंट्स नोन थे उनको उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पर इन्होंने भी अरेंज किया। इन द ईयर 1866 इनके टाइम पर 56 एलिमेंट्स जो थे उससे ज्यादा एलिमेंट्स नोन तो थे लेकिन इन्होंने 56 एलिमेंट्स को ही अरेंज किया, और सबसे पहला एलिमेंट उसमें हाइड्रोजन था और सबसे लास्ट वाला एलिमेंट जो था वो था थोरियम, जिसका 56 होता है नंबर, मतलब लास्ट नंबर जो लास्ट एलिमेंट था वो थोरियम था, 56 एलिमेंट जो था जिसको इन्होंने अरेंज किया वो थोरियम था। उसके बाद जब इन्होंने अरेंज कर दिया सारे एलिमेंट्स को, 56 एलिमेंट्स को, तो इन्होंने ये देखा, इनका कहना था कि जो एलिमेंट्स हैं उनमें से जो एवरी 8th एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज पहले वाले एलिमेंट के जैसी होती हैं, और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे 7 सुर होते हैं, एक सरगम के 7 सुर होते हैं, तो हर आठवां सुर जो है वो पहले वाले सुर के जैसा ही होता है। तो इनका यही कहना था कि जैसे ही ये अरेंज कर रहे थे एलिमेंट्स को इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, तो इन्होंने ये देखा कि एवरी एट्थ एलिमेंट जो था उसकी प्रॉपर्टीज पहले वाले एलिमेंट के फर्स्ट एलिमेंट की जैसी थी, और इसीलिए इन्होंने अपने लॉ का नाम दिया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टा मतलब एट, और यहाँ पर ये यही कह रहे थे कि एवरी एट्थ एलिमेंट पोजेसेस द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। अगर आप लोगों को एग्जाम्पल से समझाऊं तो आप टेबल 5.3 देखो पेज नंबर 81 पर, इसमें आप देखो, इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि लिथियम को मान लो अगर मैं पहला एलिमेंट लेती हूँ तो लिथियम के बाद जो एट्थ एलिमेंट होगा वो होगा सोडियम, और सोडियम की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो लिथियम के जैसी होती हैं। तो ऐसे ही इनका कहना था कि आप कोई से भी एलिमेंट से शुरू करो, उसके बाद का जो एट्थ एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी पहले वाले एलिमेंट के जैसी होगी। अगर बेरिलियम से शुरुआत करेंगे तो बेरिलियम के बाद जो एट्थ एलिमेंट है वो मैग्नीशियम है, और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज बेरिलियम के जैसी है। यही न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है। न्यूलैंड्स की कोशिश अच्छी थी, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने जो अपना लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया था इसमें काफी सारी कमियां थी। जैसे कि इन्होंने जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया था ये केवल कैल्शियम तक ही अप्लाई हो पा रहा था। कैल्शियम के बाद जो एलिमेंट्स थे उसका एट्थ एलिमेंट जो था उसकी प्रॉपर्टीज पहले वाले एलिमेंट की जैसी नहीं आ रही थी, तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कैल्शियम के बाद ठीक से फॉलो नहीं हो पा रहा था। उसके बाद क्योंकि न्यूलैंड्स ने केवल 56 एलिमेंट्स को ही अपने टेबल में डाला था, अरेंज किया था, तो इनका ये कहना था कि 56 एलिमेंट्स के अलावा कोई और एलिमेंट्स है ही नहीं, हो ही नहीं सकते। साथ में इन्होंने यहाँ तक भी कह दिया था कि फ्यूचर में, भविष्य में 56 एलिमेंट्स के अलावा एलिमेंट्स मिलेंगे नहीं, लेकिन एलिमेंट्स मिले, वैज्ञानिकों ने खोज की तो उनको काफी सारे एलिमेंट्स इनके लॉ ऑफ ऑक्टेव्स आने के बाद भी मिले। तो उससे ये सिद्ध हो गया कि इन्होंने जो प्रिडिक्शन की थी कि 56 एलिमेंट्स के बाद आपको कोई एलिमेंट नहीं मिलेंगे वो बिल्कुल गलत थी, इसीलिए काफी लोगों ने इनके लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को मानना बंद कर दिया। न्यूलैंड जो टेबल बना रहे थे उसमें उन्होंने एलिमेंट्स का फिट करने के लिए, उनको पूरे जितने इनके 56 एलिमेंट्स को उन्हीं के अपने एक सिंगल टेबल में फिट करने के लिए दो दो एलिमेंट्स को इन्होंने एक ही स्लॉट में डाल दिया। आप टेबल देख सकते हैं, टेबल 5.3 में इन्होंने कोबाल्ट और निकल को एक ही स्लॉट में डाल दिया। कोबाल्ट का सिंबल होता है CO, कैपिटल C स्मॉल O, और निकल का होता है कैपिटल N स्मॉल I। कोबाल्ट और निकल को इन्होंने सेम ही स्लॉट में तो डाल दिया, साथ में इन्होंने कोबाल्ट और निकल को एक ऐसे ग्रुप में डाला, फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन के ग्रुप में डाला, जिनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल भी आपस में मिलती जुलती नहीं है। और तो और इन्होंने क्या किया, जो आयरन था, आयरन की प्रॉपर्टीज कोबाल्ट और निकल की जैसी होती हैं, लेकिन इन्होंने आयरन को कोबाल्ट और निकल से काफी दूर दूसरे ग्रुप में रखा हुआ था। उसके बाद जो इनका कहना था कि 56 एलिमेंट्स के अलावा एलिमेंट्स ही नहीं होंगे, वो बात बिल्कुल गलत हो गई क्योंकि एलिमेंट्स मिलने लगे। साथ में जो इनर्ट गैसेस, जो नोबल गैसेस मिल रही थी, उनकी खोज होने के बाद उनको कोई स्थान नहीं मिल रहा था इनके टेबल के अंदर। तो इसीलिए फाइनली इनका जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था बिल्कुल ही इररिलेवेंट हो गया। साइंटिस्ट ने, सबने मिलकर के कह दिया कि ये बिल्कुल भी कहीं पर ठीक से नहीं बैठ रहा है, और दूसरे तरीके के पीरियोडिक टेबल की खोज शुरू हुई, दूसरे अरेंजमेंट की खोज शुरू हुई, जिसमें वैज्ञानिक दूसरे ढंग से, एक अलग ढंग से पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे जो पेज नंबर 81 पर हैं, तो हम लोग ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं, तो हम दोबारा यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। आपको इनके आंसर्स वापस से सुनने हैं तो आप प्रीवियस लेक्चर को वापस से सुन लीजिए। हम यहाँ पर मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करेंगे। सभी साइंटिस्ट के बाद सबसे अच्छा जो पीरियोडिक टेबल बन करके आया था वो मेंडलीव का ही था। मेंडलीव जो थे वो एक रशियन केमिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था, इनके समय पर 63 एलिमेंट्स वर नोन, उस वक्त 63 एलिमेंट्स की खोज हो चुकी थी। मेंडलीव्स ने क्या किया कि जितने भी एलिमेंट्स उनको मालूम थे, 63 एलिमेंट्स, उनके सभी के एटॉमिक मासेस पता करके वो एक कोरिलेशन, एक संबंध ढूंढने लग गए एटॉमिक मास और केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बीच में। एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास था उसके बीच और उनके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बीच ये एक रिलेशन ढूंढने लग गए थे। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने सभी के सभी जो एलिमेंट्स थे उनको अलग अलग कार्ड्स पर लिखा, उनके नाम लिखे। जैसे कि 63 एलिमेंट्स हैं तो इन्होंने 63 कार्ड्स बनाए, हर एक कार्ड पर हर एक एलिमेंट का नाम लिखा और उसके ऊपर उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज लिखी। केमिकल प्रॉपर्टीज में इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये आधार लिया कि वो एलिमेंट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है। ये आधार इन्होंने इसलिए लिया क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो होते हैं बहुत रिएक्टिव होते हैं, तो ऑलमोस्ट सभी एलिमेंट्स के साथ वो रिएक्ट कर जाते हैं। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए इन्होंने ये आधार चुना कि जो एलिमेंट्स है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं और किस तरीके का उनका फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला उनका कैसा होता है। फिर इन्होंने जो सिमिलर केमिकल फॉर्मूला वाले जो एलिमेंट्स थे जिनका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद जो केमिकल फॉर्मूला मिलता था वो अगर एक जैसा था, सिमिलर था, तो ऐसे एलिमेंट्स को इन्होंने इकट्ठा किया, इनको पिन किया और इकट्ठा एक जगह दीवार पर लगा दिया। तो इस तरीके से इनको काफी सारे ग्रुप्स मिल गए जिसमें एलिमेंट्स के जो ऑक्साइड और हाइड्राइड का फॉर्मूला था वो सेम था। उसके बाद मेंडलीव्स ने एक लॉ दिया, इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसमें इन्होंने कहा कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। जो एलिमेंट्स होते हैं उनका जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो पीरियोडिक फंक्शन है ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो जो एलिमेंट्स है उनका जो फंक्शन है, उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो उनकी एटॉमिक मासेस का पीरियोडिक फंक्शन है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ते जा रहा है, इस तरीके से इन्होंने अरेंज किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेसिस पर इन्होंने उनको अरेंज किया एलिमेंट्स को। तो ये कह रहे थे कि कुछ समय के बाद वापस से सेम प्रॉपर्टी वाला केमिकल एलिमेंट हमें मिल जाता है। ऐसा एलिमेंट हमें कुछ समय बाद, हर एक थोड़े थोड़े समय बाद हमें एक ऐसा एलिमेंट्स मिलता है जिसकी प्रॉपर्टी दूसरे एलिमेंट की जैसी होती है। तो इसी को कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन होना, यानी कि एक समय के बाद वापस से वही चीज रिपीट हो रही है, इसे पीरियोडिक फंक्शन होना कहते हैं। तो एटॉमिक मास के आधार पर जब एलिमेंट्स को बांटा गया, जब अरेंज किया गया, तो ये देखा गया कि कुछ समय के बाद एलिमेंट्स ऐसे नजर आते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज दूसरे एलिमेंट्स की जैसी सिमिलर होती हैं। और ये लॉ आप लोगों को याद रखना है जो मेंडलीव्स का पीरियोडिक लॉ है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मासेस। इसे याद रखना क्योंकि ये स्टेटमेंट आप लोगों को पूछने के लिए आ सकती है। मेंडलीव्स ने क्या किया, मेंडलीव्स ने एक टेबल बनाया जिसके अंदर इन्होंने जो वर्टिकल कॉलम्स थे ऊपर से नीचे की ओर जो कॉलम्स होते हैं इनको इन्होंने ग्रुप्स कहा, और जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं लेफ्ट से राइट की ओर जो रोज हैं इनको इन्होंने पीरियड्स कहा। तो आप देख सकते हैं टेबल 5.4 में पेज नंबर 83 में जो टेबल बनाई गई है इसके अंदर जो ग्रुप्स हैं वो कितनी हैं, वो 8 हैं, और इसके अंदर पीरियड्स कितने हैं, पीरियड्स इसके अंदर 6 हैं। उसके बाद आप ये भी देख पा रहे होंगे कि हर एक ग्रुप के ऊपर उनके ऑक्साइड का, जो एलिमेंट्स उस ग्रुप के हैं उनके ऑक्साइड का फॉर्मूला दिया गया है, जनरल फॉर्मूला दिया गया है, और हाइड्राइड का भी जनरल फॉर्मूला दिया गया है। यहां तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। हमने कहा कि मेंडलीव्स ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया वो सबसे खास था, सबसे अच्छा था, सबसे अच्छी कोशिश उनकी थी। ऐसा कहने के पीछे एक कारण है, मेंडलीव्स ने बाकी सारे साइंटिस्ट की तरह केवल ऐसे ही नहीं बना दिया अपना पीरियोडिक टेबल, उसके ऊपर उन्होंने काफी मेहनत की। जब उन्होंने अरेंज किया एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, तो साथ में उन्होंने उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की सिमिलैरिटीज को भी बहुत ज्यादा ध्यान में रखा। उनकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज थी एलिमेंट्स की वो सिमिलर है या नहीं, अगर एक ग्रुप में उन्हें डाला जाए तो प्रॉपर्टीज सिमिलर है या नहीं, ये भी उन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान में रखा। इस बात को ध्यान में रखते हुए कभी कभी उन्हें ऐसे एलिमेंट्स मिले जिनका एटॉमिक मास अपने पहले वाले एलिमेंट से कम होता था, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने उन एलिमेंट्स को अलग तरीके से अरेंज किया। इसको आप एग्जांपल से समझेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आप लोग पेज नंबर 83 पर आओ और टेबल देखो, टेबल 5.4। इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कोबाल्ट, कोबाल्ट का केमिकल जो सिंबल होता है वो होता है कैपिटल सी स्मॉल ओ, ये आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा ग्रुप 8 के अंदर आप लोगों को दिख रहा होगा। तो जो कोबाल्ट है उसका एटॉमिक मास है 58.93। उसके अगला वाला एलिमेंट जो है वो है निकल, और निकल जो है उसका एटॉमिक मास है 58.71। निकल आप लोग देख पा रहे हैं कोबाल्ट के बाद लिखा गया, लेकिन उसका एटॉमिक मास कोबाल्ट से कम है, जबकि मेंडलीव्स ने तो अरेंज किया था एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, यानी कि कोबाल्ट के बाद जो एलिमेंट आना चाहिए था उसका एटॉमिक मास तो कोबाल्ट से ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ऐसा एलिमेंट रखा गया है जिसका एटॉमिक मास कोबाल्ट से कम है। तो मेंडलीव्स ने जो एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज किया उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। मेंडलीव्स ने कहा था कि जो एलिमेंट्स हैं भले ही उनके एटॉमिक मास पहले वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास से कम है, लेकिन जिस एलिमेंट की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है मैं उन्हीं को सेम ग्रुप में रखूंगा। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि द सीक्वेंस वॉज इन्वर्टेड, यानी कि जो सीक्वेंस था जिसमें हम लोग एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास अरेंज कर रहे थे, दैट सीक्वेंस वॉज समटाइम्स इन्वर्टेड सो दैट एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज कुड बी ग्रुप्ड टुगेदर। ऐसे एलिमेंट्स जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं उनको एक ग्रुप में लाने के लिए इनका जो सीक्वेंस था, कभी कभी इन्होंने इस सीक्वेंस को फॉलो ना करना बेहतर समझा। ऐसा एक और एग्जाम्पल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है ग्रुप 5 और ग्रुप 6 में। ग्रुप 5 में जो एलिमेंट है वेनेडियम, इसका एटॉमिक मास है 50.94, और ग्रुप 6 के अंदर जो एलिमेंट है वो है क्रोमियम और इसका एटॉमिक मास है 50.20। वेनेडियम का एटॉमिक मास क्रोमियम से ज्यादा है, उसके बावजूद भी उल्टा रखा गया है इन्हें, यानी कि हमको ऐसे रखना चाहिए था कि वेनेडियम जो हो वो ग्रुप 6 में आए, लेकिन हमने रखा इस तरीके से कि वेनेडियम जो था वो ग्रुप 5 में आ रहा था। वो बस इसलिए किया गया क्योंकि मेंडलीव चाहते थे कि ऐसे एलिमेंट्स जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं वो सेम ग्रुप में आए, और ऐसा करने के लिए कभी कभी इन्होंने ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक मास पहले वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास से कम थी उसके बावजूद भी उनको उन्होंने बाद में लिखा। तो क्रोमियम का एटॉमिक मास वेनेडियम से कम है फिर भी उसको बाद में लिखा गया है, और ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की एक अचीवमेंट है। उसके बाद मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया उसके अंदर इन्होंने कुछ गैप्स खाली छोड़ दिए। इन गैप्स को एक कमी की तरह समझने के बजाय मेंडलीव ने बहुत बोल्डली एक प्रिडिक्शन यानी कि भविष्यवाणी की थी कि ये जो गैप्स उन्होंने छोड़े हैं वहां पर एलिमेंट्स जो खोजे नहीं गए हैं वो खोजे जा सकते हैं। वो एलिमेंट्स जो खोजे नहीं गए थे उस वक्त उनके लिए जो गैप छोड़ा गया था उनका नाम रखा गया था इस तरीके से, अ प्रीफिक्स एका वॉज एडेड टू द नेम ऑफ द प्रीसीडिंग एलिमेंट इन द सेम ग्रुप। नाउ एका जो होता है ये संस्कृत वर्ड है, जैसे एकम द्वितीयम तृतीयम, तो एका जो है ये संस्कृत वर्ड है, इसको यूज किया था मेंडलीव ने, और इन्होंने उन एलिमेंट्स की नेमिंग ऐसे की थी कि ये जो एका लगाया था इन्होंने ये प्रीसीडिंग एलिमेंट के सेम ग्रुप के प्रीसीडिंग एलिमेंट के नाम के आगे लगाया गया था। इसको समझने के लिए एग्जाम्पल से समझो, पेज नंबर 83 पर ग्रुप 3 का जो एलिमेंट्स है स्कैंडियम, स्कैंडियम का सिंबल है कैपिटल एस स्मॉल सी, ये स्कैंडियम का सिंबल है, इसका एटॉमिक मास है 44.96, ग्रुप 3 का एलिमेंट है। जब मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल दिया था उस वक्त स्कैंडियम की खोज नहीं हुई थी, बाद में हुई थी, और मेंडलीव ने स्कैंडियम की जगह पर एक खाली जगह छोड़ दी थी, और मेंडलीव ने कहा था कि जो स्कैंडियम है उस जगह पर जो उन्होंने खाली जगह छोड़ी हुई है वहां पर एक एलिमेंट की खोज होगी और उन्होंने उसका नाम दिया था एका बोरोन। तीन एलिमेंट्स की जगह पर उन्होंने तीन खाली स्पेसेस छोड़ी थी, स्कैंडियम की जगह पर, गैलियम की जगह पर और जर्मेनियम की जगह पर। ग्रुप 3 में ही स्कैंडियम के नीचे गैलियम दिया हुआ है, गैलियम का सिंबल होता है कैपिटल जी स्मॉल ए, इसका एटॉमिक मास है 69.72। गैलियम भी उस वक्त डिस्कवर्ड नहीं हुआ था, बाद में जाके इसकी डिस्कवरी हुई, और गैलियम जब डिस्कवर नहीं हुआ था तो मेंडलीव ने उसको नाम दिया था एका एल्यूमिनियम। अब देखो इसकी नेमिंग कैसे होती है, मैंने आप लोगों को कहा कि सेम ग्रुप के प्रीसीडिंग एलिमेंट के नाम के आगे एका लग जाता है तो उस एलिमेंट की नेमिंग हो जाती है। अब आप लोग स्कैंडियम के एग्जाम्पल से समझ सकते हो, स्कैंडियम की नेमिंग करने के लिए हमने क्या नाम रखा था उसका, एका बोरोन, तो बोरोन जो है उसके नाम के आगे प्रीफिक्स लगाया गया एका और उससे नेमिंग की गई स्कैंडियम की और नाम रखा गया एका बोरोन। अब सपोज करो कि गैप जो था वो गैलियम की जगह पर था, तो जब गैलियम की जगह, गैलियम उस वक्त उसकी खोज नहीं हुई थी, तो गैलियम की जगह मान लो एक स्पेस था, एम्प्टी स्पेस था, तो अब नेमिंग करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फोर्थ पीरियड में एक रो स्किप करनी पड़ेगी, स्कैंडियम की रो जो है उसको स्किप कर देंगे तो हम लोग को जो एलिमेंट मिलेगा वो एल्यूमिनियम का मिलेगा, और जो एक रो स्किप करने के बाद हमें एलिमेंट मिलता है उसी के नाम के आगे हम एका लगाते हैं और नेमिंग करते हैं एम्प्टी स्पेस की। मेंडलीव ने केवल तीन ही एम्प्टी स्पेसेस छोड़े थे। अब जो मैंने आपको समझाया है उसको आप लोग अप्लाई करेंगे तो आप लोग गैलियम का नेमिंग कर पाएंगे। गैलियम की नेमिंग करने के लिए गैलियम के ऊपर आपको एक रो स्किप करनी है, यानी कि स्कैंडियम की रो स्किप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम मिलेगा, तो गैलियम की नेमिंग होगी एल्यूमिनियम के नेमिंग पर, और एल्यूमिनियम के नाम के आगे लग जाएगा एका, यानी कि एक प्रीफिक्स ऐड हो जाएगा एका, और गैलियम का नेम हो जाएगा एका एल्यूमिनियम। इसी तरह आप लोग स्कैंडियम की नेमिंग भी कर सकते हैं। मान लो अगर स्कैंडियम की नेमिंग करनी है तो स्कैंडियम के लिए क्या करना पड़ेगा, स्कैंडियम के ऊपर एक रो स्किप करेंगे, एल्युमिनियम वाली रो को स्किप कर देंगे, उसे एलिमिनेट कर देंगे, तो उसके ऊपर आपको क्या मिलेगा, बोरोन मिलेगा। तो आपको स्कैंडियम की जब नेमिंग करनी है तो बोरोन के नाम के अकॉर्डिंग करनी है, और आपको बोरोन के नाम के आगे प्रीफिक्स लगाना है एका, और आपको स्कैंडियम का नेम मिल जाएगा। रिमेम्बर कि ये जो स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम नेम्स हैं, ये बाद में दिए गए हैं। उस वक्त जब मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था उस वक्त इनके नाम नहीं थे, नाम रखे गए थे। जैसे मैंने आपको बताया था, एका बोरोन नाम रखा गया था स्कैंडियम का, एका एल्युमिनियम नाम रखा गया था गैलियम का, और एका सिलिकन नाम रखा गया था जर्मेनियम का। आप लोगों को इसके पीछे का रीजन समझ में आ रहा होगा। जर्मेनियम जो है वो ग्रुप 4 का एलिमेंट है। जर्मेनियम का अटोमिक मास है 72.59, इसका अटोमिक सिंबल होता है कैपिटल जी स्मॉल ई, जर्मेनियम। जर्मेनियम की नेमिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जर्मेनियम के ऊपर एक रो स्किप करेंगे, यानी कि टाइटेनियम की जो रो है उसे स्किप कर देंगे, तो आपको सिलिकन मिल जाएगा। सिलिकन का सिंबल होता है कैपिटल एस आई, ग्रुप 4 में ही, सेम ग्रुप होना चाहिए लेकिन एक रो स्किप करेंगे उसी सेम ग्रुप के अंदर, जो ऊपर वाला एलिमेंट आएगा उसके नाम के अकॉर्डिंग आपको नेमिंग करनी होती है। तो अगर आप लोगों को जर्मेनियम की नेमिंग करनी होगी तो सेम ग्रुप के अंदर एक रो स्किप करो, यानी कि टाइटेनियम की रो को स्किप कर दो। टाइटेनियम का अटोमिक मास है 47.90, तो टाइटेनियम की रो को स्किप कर दो, आपको जो नेक्स्ट रो मिलेगी ऊपर वाली वो सिलिकन की मिलेगी। सिलिकन का अटोमिक मास है 28.09। अब आप लोगों को जब जर्मेनियम की नेमिंग करनी है तो आपको सिलिकन के अकॉर्डिंग करनी है, और वो भी कैसे करनी है, सिलिकन के प्रीफिक्स लगा देना है आगे, यानी कि सिलिकन के नाम के आगे आपको एका लगा देना है। तो इसी तरीके से जर्मेनियम की नेमिंग हो जाएगी। और ये जो नेमिंग है ये हम लोग समझ रहे हैं कि मेंडलीव्स ने कैसे की थी। बाद में जब डिस्कवरी हुई लेटर ऑन इन एलिमेंट्स की, तो हम लोगों को ये जो एलिमेंट्स मिले बाद में इनका नेमिंग किया गया, IUPAC नेमिंग किया गया, उसके बाद इनके नाम रखे गए स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। उसके पहले जब डिस्कवरी नहीं हुई थी उस वक्त ही मेंडलीव्स ने कहा था कि जो एलिमेंट्स खोजे जाएंगे इनकी प्रॉपर्टी जो होगी, जैसे इन्होंने नाम भी इसी आधार पर रखा था कि अगर आप स्कैंडियम के बारे में बात करें तो स्कैंडियम की प्रॉपर्टीज जो होंगी वो बोरोन की जैसी होंगी, इसीलिए इन्होंने उसका नाम एका बोरोन रखा था। और जो गैलियम था उसकी प्रॉपर्टीज किसकी जैसी होती, उसकी प्रॉपर्टीज होती एल्युमिनियम की जैसी, इसीलिए उसका नाम गैलियम का नाम एका एल्युमिनियम रखा गया था। और ये मेंडलीव्स की एक बहुत ही बोल्ड प्रेडिक्शन थी जो बिल्कुल सही साबित हुई थी बाद में जाकर, और इसी वजह से इनके काम को काफी अप्रिसिएशन भी मिला था। तो यहाँ पर जो मेंडलीव्स के काम थे, जैसे कि उन्होंने एक सबसे बोल्ड प्रेडिक्शन ये करी कि कुछ एलिमेंट्स को उन्होंने एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग नहीं अरेंज किया, उनको डिक्रीजिंग के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया, और कहीं कहीं पर उन्होंने ब्लैंक स्पेसेस छोड़ दिया और ये कह दिया कि यहाँ पर एलिमेंट डिस्कवर होने बाकी हैं। तो ये जो बातें थी ये बाद में जाके बिल्कुल सही साबित हुई, जिसकी वजह से साइंटिस्ट जो थे ऑल ओवर द वर्ल्ड उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, इन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ मेंडलीव्स ने बहुत अच्छा काम किया है, और इनकी पीरियोडिक टेबल को काफी ज्यादा रिकॉग्निशन भी मिली थी। उसके साथ में मेंडलीव ने, क्योंकि सभी एलिमेंट्स को उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होने के आधार पर ग्रुपिंग की थी, तो इसीलिए जो हीलियम और नियॉन और आर्गन, ये जो नोबल गैसेस हैं, ये बाद में डिस्कवर हुए थे। जब मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था उसके बहुत बाद में ये डिस्कवर हुए थे, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम भी नहीं थी कि हम लोग नोबल गैसेस को कहाँ रखेंगे, क्योंकि उसका एक अलग ग्रुप बनाया जा सकता है, क्योंकि उन सभी नोबल गैसेस जो होती है उनकी रिएक्टिविटी सेम होती है, उनका रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन और उनकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, जो कि बाकी सारे एलिमेंट्स से सिमिलर नहीं है, क्योंकि बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज इनर्ट गैसेस यानी कि नोबल गैसेस की जैसे नहीं होती, तो हम नोबल गैसेस का अलग ग्रुप बना सकते थे। तो ये दिक्कत भी नहीं थी कि हम नोबल गैसेस को कहाँ रखेंगे। नोबल गैसेस जो होती थी वो बहुत, उनको टाइम लग गया डिस्कवर होने में, इसलिए क्योंकि वो बहुत लेस रिएक्टिव होती हैं, केमिकली बहुत स्टेबल होती हैं, तो उनको खोज पाना बहुत मुश्किल था। और साथ ही में ये जो नोबल गैसेस होती हैं ये एटमॉस्फेयर में बहुत कम कंसंट्रेशन में मौजूद होती हैं। उसी के साथ में यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हो पेज नंबर 84 पर आप लोगों को एक टेबल दिया है, टेबल 5.5। इसमें आप लोगों को बताया गया है कि एका एल्युमिनियम जो है उसकी प्रॉपर्टीज किस तरीके से सिमिलर है गैलियम के साथ में। जो एका एल्युमिनियम है उसका जो ऑक्साइड बनता है उसका फॉर्मूला भी E2O3 होता है, और गैलियम जो है उसका ऑक्साइड का फॉर्मूला भी Ga2O3 है, यानी कि अगर ई की जगह पर आप गैलियम का केमिकल फॉर्मूला डाल देंगे तो आपको Ga2O3 मिल जाएगा। सिमिलरली जो क्लोराइड्स हैं एका एल्युमिनियम के और गैलियम के, इनका फॉर्मूला भी सेम है। तो इसी आधार पे कहा था मेंडलीव ने कि एका एल्युमिनियम और गैलियम जो है वो सेम एलिमेंट्स है। इन्होंने कहा था कि एका एल्युमिनियम नाम का एलिमेंट आपको खोजना है जिसकी प्रॉपर्टीज हैं जो यहाँ पर टेबल में दी गई है, मतलब कि ऑक्साइड का फॉर्मूला होगा E2O3 और क्लोराइड का फॉर्मूला होगा ECl3। तो बाद में जब गैलियम को ढूंढा गया और उसका जो ऑक्साइड बना उसका बिल्कुल वही फॉर्मूला निकला जो मेंडलीव ने प्रिडिक्ट किया था। तो ये सारी की सारी जो है ये मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की अचीवमेंट्स हैं। अब उसके बाद हर एक पीरियोडिक टेबल की कुछ न कुछ कमियां रही हैं, तो कुछ थोड़ी बहुत कमियां मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की भी थी, और उनमें से सबसे मुख्य कमी ये थी कि उन्होंने हाइड्रोजन को सही जगह नहीं दी हुई थी। उनके पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की जो जगह थी उसकी जो प्लेसमेंट थी वो ठीक नहीं थी। आप लोगों को पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है, 1 है। तो इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होगा कि इसके वैलेंस शेल में, यानी कि सबसे बाहर वाले शेल में, आउटर मोस्ट शेल में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, और ये जो आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है ये रिजेंबल करता है अल्कली मेटल्स को। अल्कली मेटल्स कौन से मेटल्स होते हैं, यहाँ पर आप लोग जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल देखो पेज नंबर 83 पर आकर के देखो, ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये जो एलिमेंट्स हैं ये अल्कली मेटल्स होते हैं। आप लोग जब मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल देखेंगे, टेबल 5.4 पेज नंबर 83 पर है, इसमें आप देख रहे होंगे कि ग्रुप 1 के अंदर दो ग्रुप्स और बनाई गई हैं, ए और बी। तो जो ए वाला ग्रुप है उसको देखो आप लोग, उसमें क्या क्या है, उसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबीडियम का सिंबल होता है कैपिटल आर स्मॉल बी, इसका एटॉमिक मास है 85.47, इसे रूबीडियम कहते हैं, और सीजियम का सिंबल होता है कैपिटल सी स्मॉल एस, इसका एटॉमिक मास है 132.90, इसको सीजियम कहते हैं। तो ये जो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबीडियम, सीजियम, इनमें से हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो मेटल्स हैं और इन्हें अल्कली मेटल्स कहते हैं। अब मेंडलीव्स ने जब अपना पीरियोडिक टेबल बनाया तो उन्होंने उसमें हाइड्रोजन को अल्कली मेटल्स के साथ में इसलिए रख दिया क्योंकि अल्कली मेटल्स के भी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और हाइड्रोजन के भी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। बाकी की जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि हमारे बाकी के अल्कली मेटल्स जो है वो मेटल्स है लेकिन हाइड्रोजन एक मेटल नहीं है क्योंकि उसमें लस्टर नहीं होता, वो सोनरस नहीं होता। बाकी सारी मेटल की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो आप लोगों को वैसी नहीं मिलेंगी जैसी आप लोगों को अल्कली मेटल्स में मिलती हैं। लेकिन मेंडलीव्स ने जो हाइड्रोजन को अल्कली मेटल्स के साथ में रखा था वो इसलिए रखा था कि कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन अल्कली मेटल्स की तरह दिखाता है क्योंकि उसका भी आउटर मोस्ट जो शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो उसी हिसाब से जो हाइड्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सिमिलर होती है अल्कली मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज की तरह होती है। काफी सारी प्रॉपर्टीज मिलती हैं, जैसे कि हाइड्रोजन का जो क्लोराइड होता है उसका फॉर्मूला होता है HCl और सोडियम का जो क्लोराइड होगा उसका फॉर्मूला होता है NaCl। इसी तरीके से हाइड्रोजन का जो ऑक्साइड होता है उसका फॉर्मूला होता है H2O, सोडियम का फॉर्मूला होता है ऑक्साइड का Na2O। तो सिमिलर है, H2S बनाता है हाइड्रोजन जब वो सल्फर के साथ रिएक्ट करता है और सोडियम जब सल्फर के साथ रिएक्ट करता है तो वो Na2S बनाता है। तो यहाँ पर जो केमिकल फॉर्मूलाज है हाइड्रोजन के और अल्कली मेटल्स के ये एक जैसे हैं, इसी वजह से मेंडलीव्स ने हाइड्रोजन को अल्कली मेटल्स के साथ में रख दिया था। लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन की अल्कली मेटल्स से काफी अलग भी हैं और वो कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वो हेलोजन को रिजेंबल करती हैं। हेलोजन कौन से होते हैं, हेलोजन वो ग्रुप होता है जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को रखा गया है। ग्रुप 7 जो है इसमें आप लोग ए देखें, ग्रुप ए देखें, यहाँ पर आप लोगों को फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन का फॉर्मूला होता है केमिकल फॉर्मूला कैपिटल F और क्लोरीन का होता है कैपिटल C स्मॉल L, ब्रोमीन का होता है कैपिटल B स्मॉल R और आयोडीन का कैपिटल I। ग्रुप A 7 में है ये सारे के सारे। तो हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज तो अल्कली मेटल्स के जैसी थी और कुछ प्रॉपर्टीज हेलोजन्स की जैसी थी। कौन सी प्रॉपर्टीज थी हेलोजन्स की जैसी, जैसे हेलोजन्स डायटॉमिक होते हैं यानी कि आपको Cl2 मिलता है, दो एटम्स मिलते हैं क्लोरीन जब आप लोगों को एटमॉस्फेयर में मिलता है तो आप लोगों को हमेशा Cl2 मिलता है, मॉलिक्यूल मिलता है। लेकिन ये आप लोगों को मेटल्स के केस में नहीं मिलेगा, जैसे Na2 आप लोगों को मॉलिक्यूल के रूप में नहीं मिलेगा एटमॉस्फेयर में, जो अल्कली मेटल्स होते हैं ये कंपाउंड बना करके आप लोगों को मिलते हैं, क्रस्ट में मिलते हैं, अर्थ के क्रस्ट में मिलते हैं। या फिर किसी और फॉर्म में मिलते हैं, लेकिन उनका डाई एटॉमिक रूप में वो मॉलिक्यूल बना करके, दो एटम्स मिलकर के, दो अल्कली मेटल मिलकर के एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाए, इस तरीके से आपको नहीं मिलेगा। लेकिन हाइड्रोजन आपको मिलता है, H2 के फॉर्म में आपको मिलता है। सिमिलरली आपको Cl2 भी मिलता है, F2 भी मिलता है। तो हेलोजन्स की जैसे हाइड्रोजन जो है वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के रूप में हमें मिलता है। इसी के साथ में जो हाइड्रोजन है ये मेटल्स के साथ, नॉन मेटल्स के साथ कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, और वो भी वो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं। जो अल्कली मेटल्स है, आप लोगों को पता है अल्कली मेटल्स जो होते हैं वो हमेशा आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि वो बहुत इजीली अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर देते हैं, तो इसीलिए वो आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं, सॉल्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन हाइड्रोजन जो है वो हेलोजन की तरह ही मेटल्स के साथ, नॉन मेटल्स के साथ कंबाइन करके कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाता है। तो इसीलिए आप कोई एक जगह नहीं दे सकते हैं हाइड्रोजन को ये कहकर कि ये ग्रुप 1 को बिलोंग करता है या ग्रुप 7 को बिलोंग करता है। लेकिन मेंडलीव्स ने हाइड्रोजन को ग्रुप 1 के साथ रख दिया था, जो कि गड़बड़ कर दी थी उन्होंने। एक्टिविटी 5.1 पेज नंबर 84 में भी यही बात हो रही है कि हाइड्रोजन को जो रखा गया है अल्कली मेटल्स के साथ में, क्या वो सही है, और ये बोला गया है कि उसे कहाँ रखा जाना चाहिए। तो देखो, हाइड्रोजन जो होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल्स की जैसी होती है, कुछ प्रॉपर्टीज हेलोजन की जैसी होती हैं, और कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो ना हेलोजन से मैच करती है ना अल्कली मेटल से मैच करती हैं। तो इसीलिए हाइड्रोजन को ना आप अल्कली मेटल्स के साथ रख सकते हैं ना हेलोजन के साथ रख सकते हैं, उसको आपको सेपरेट रखना पड़ेगा। जो कि आप लोगों को जो लास्ट पीरियोडिक टेबल बनी है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बनी है, उसमें आप लोग देखेंगे कि किस तरीके से हाइड्रोजन की प्लेसमेंट की जाती है। तो एक तो हाइड्रोजन की प्लेसमेंट जो थी उसकी गड़बड़ की थी मेंडलीव्स ने अपने पीरियोडिक टेबल में। दूसरा, इन्होंने क्या किया था कि कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके आइसोटोप्स मिलते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स कुछ एलिमेंट्स के होते हैं जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है लेकिन एटॉमिक नंबर सिमिलर होता है। जैसे कि क्लोरीन का एग्जांपल ले लो, जो क्लोरीन है उसका एटॉमिक मास, मान लो उसके दो आइसोटोप्स हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, और ये दोनों क्या है, ये क्लोरीन के आइसोटोप्स हैं क्योंकि इनका एटॉमिक मास अलग अलग है। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर तो सेम ही होता है 17, तो क्योंकि मेंडलीव्स ने अपने एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के आधार पे ऑर्डर किया था, उनका अरेंजमेंट किया था, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इस हिसाब से तो उनको आइसोटोप्स को अलग अलग जगह देनी थी, क्योंकि उन्होंने तो एटॉमिक मास के आधार पे रखा हुआ है, एटॉमिक नंबर के आधार पे रखा हुआ था, तो ये दिक्कत नहीं आती, आइसोटोप्स वाली दिक्कत नहीं आती। लेकिन एक एलिमेंट, कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके दो एटॉमिक मास मिलते हैं हम लोगों को, उनके फॉर्म जो होते हैं वो दो मिलते हैं, जिनमें उनके दो एटॉमिक मास हो सकते हैं, एक अलग और दूसरा अलग। जैसे कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर तो सेम है 17, लेकिन उसके दो एटॉमिक मास मिल सकते हैं। एक हमें क्लोरीन मिलता है जिसका एटॉमिक मास 35 होता है, और एक और क्लोरीन हमें मिलता है जिसका एटॉमिक मास 37 होता है। अलग अलग एटॉमिक मास हो, एटॉमिक नंबर सेम हो, ऐसे एलिमेंट्स को हम आइसोटोप कहते हैं उसी एलिमेंट का। जैसे कि क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, ये क्लोरीन के आइसोटोप्स कहलाएंगे। तो आइसोटोप्स की प्लेसमेंट ठीक से नहीं हो पा रही थी, ये कंफ्यूजन हो रहा था। साथ में हम लोग देख पाते हैं कि जो मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल है, इन्होंने एटॉमिक मास के आधार पर रखा है, लेकिन एटॉमिक मास जो है वो बिल्कुल एकदम स्टीपली नहीं चेंज हो रहे हैं, मतलब कि हमें एक रेगुलर ट्रेंड नहीं दिखता है। जैसे 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, अगर बीच में पॉइंट्स भी आ रहे हैं, जैसे 1 के बाद आ रहा है 3.5, तो बीच में कितने सारे एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो वही कन्फ्यूजन हो रही थी कि इन्होंने एटॉमिक मास के आधार पर रखा हुआ था, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का तो एटॉमिक मास 1.008 है, उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है लिथियम, और इसका एटॉमिक मास है 6.939। तो इस तरीके से रेगुलर नहीं है, बहुत अंतर है, किसी किसी में बहुत ज्यादा अंतर है, किसी किसी में बहुत कम अंतर है। तो इससे ये कन्फ्यूजन आ रही थी कि क्या उनके बीच में कुछ एलिमेंट्स और डिस्कवर होने हैं, इसलिए इतना अंतर आ रहा है एटॉमिक मास का, तो ये भी एक प्रॉब्लम थी। तो ये सारी हमने क्या पढ़ी, ये हमने लिमिटेशंस पढ़ी, यानी कि जो गड़बड़ दिख रही थी हम लोगों को मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल में। तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया, बाकी का जो टॉपिक्स है इस चैप्टर का वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आपको क्या करना है, आपने आज जो पढ़ा है उसे आप लोग रिवाइज कर लेंगे, कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत आए तो आपको उसको अपने टीचर से जरूर पूछना है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।